हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 17 एंड 18। कृपया भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही अद्भुत श्लोकों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, यस्त्वात् मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात् मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। शब्दों का अर्थ देखेंगे, यह त्वात, यस त्वात लिखा हुआ ना, तो ये स आधा होता है तो उसको यह पढ़ते हैं, और तू का मतलब होता है लेकिन, लेकिन जो आत्मरति, आत्मरति का मतलब होता है आत्मा में ही आनंद लेते हैं, यस त्वात मरति, इस तरह का आत्मरति, आत्मरति का मतलब होता है जो आत्मा में ही आनंद लेता है। अब यहाँ पर अलग अलग है दोनों, जैसे भगवान ने लेकिन बोला ना, मतलब इसका मतलब होता है जो पहले वाले श्लोक में बात बताई गई है उससे बिल्कुल अलग बात बता रही। पहले वाले श्लोक में 16 में क्या बताया, अगार्योरिंद्रिया रामो, है ना, कि वो पापपूर्ण जीवन हमेशा इंद्रियों में ही आसक्त रहता है और इंद्रियों के विषय में ही आसक्त रहता है, इसलिए वो पाप पूर्ण जीवन गुजारता है। लेकिन यहाँ पर आत्मरति, आत्मरति यानी कि वो सदैव इंद्रियों की बात नहीं करता, उसे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जो सदैव आत्मरति, इसमें तीन जगह पर आत्मा आया, देखो आत्मरति, उसके बाद ये बता एव स्यात्, एव का मतलब होता है निश्चय ही, स्यात् मतलब रहता है, आत्मतृप्त, आत्मरति आत्मतृप्त यानी आत्मा में ही सदैव तृप्त रहता है, स्वयं प्रकाशित रहता है, उसे किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता है, अपने इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए परेशान नहीं होता है, आत्मरति आत्मा में आनंद रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, और आगे आएगा कि आत्मा संतुष्ट रहता है। ठीक है, मानव का मतलब होता है मनुष्य, और आत्मन्येव च संतुष्ट, ठीक है, आत्मन यानी अपने में ही, एव केवल, उसको किसी पर आधारित नहीं होता है, केवल अपने आप में ही संतुष्ट, पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, अब अर्जुन ने बोला था ना कि मैं कार्य नहीं करना चाहता, तो भगवान बोले तो तुम तो इस स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंचे हो ना, कार्य यहां पर था, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कार्य मतलब कर्तव्य न विद्यते, नहीं रहता। मतलब अब इस संसार में क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं और हम हर लोग दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय यानी कर्तव्य नहीं रहता है। और उसके बाद श्लोक नंबर 18 को भी साथ में, क्योंकि कंबाइन है ये दोनों, साथ में देखेंगे। भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतिनाथो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। शब्दों का अर्थ देखिए, न एव तस्य कृते, न एव मना कभी नहीं, एव मना निश्चय ही, तस्य मना उसका, उसका तो किसका, जो पहले ऊपर भगवान बताया ना, ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वरूप सिद्ध होता है, यानी कि जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, वो उसके लिए कोई कारण करणीय कार्य नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। और आगे उसी के विषय में भगवान बता रहे हैं कि न एव तस्य कृतेनार्थो, कृतेन यानी कार्य संपादन से अर्थ यानी प्रयोजन, उसको कोई कार्य करने से कोई भी प्रयोजन ही नहीं होता है, मतलब कोई कार्य करे या ना करे उससे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और न अकृते, अब कार्य करने से भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और कार्य ना करने से, अब ना ना कृतेनेह कश्चन अकृत, यानी कार्य ना करने से भी उसको कुछ भी इस संसार में सरोकार नहीं होता है, मतलब कार्य करे या ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे आगे क्या लिखा हुआ है कि ना कृतेनेह न चास्य सर्वभूतेषु, चास्य का क्या मतलब होता है, च का मतलब होता है तथा, उसका सर्वभूतेषु मतलब सारे जितने भूत प्राणी है ना, जितने दूसरे हैं ना, उसको छोड़ के जितने भी जीव हैं उसमें कश्चित, समस्त जीवों में कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, कश्चित मतलब कोई भी प्रयोजन उसके साथ, अर्थ मतलब उसका कोई भी उनके साथ प्रयोजन ही नहीं होता है, व्यपाश्रय मतलब शरणागत होता है, वो अपने आप में इतना संतुष्ट होता है, इतना संतुष्ट होता है कि वो कार्य करने में और ना करने में कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता है और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी पर भी वो आश्रित नहीं होता है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब है ना, अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण रहता है। यानी कि वो कर्म करे या ना करे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं रहती और ना करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं होता कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूं। यानी कि उसको होता ही नहीं है कि मैं काम करूं, अनुकूल है ना संकल्प प्रतिकूल है ना वर्जन, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो हर चीज में संतुष्ट रहता है, बस जो भी हो रहा है उसमें बिल्कुल संतुष्ट होता है। और आगे नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय, यानी उसे किसी भी अन्य जीवी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। अत्यंत ही अद्भुत श्लोक है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमारी भौतिक बुद्धि से बहुत परे है। जब तक गुरु और गौरंग कृपा नहीं करेंगे तब तक हम न समझ सकेंगे और न समझा सकेंगे। तो हृदय से समस्त भौतिक मलिनता को त्याग कर, बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके, गुरु और गौरंग से सच्चे हृदय से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस योग्य बनाए कि हम इस अद्भुत ज्ञान को समझ सके और इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सजीवम् साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितास्य। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गारये श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। तीसरे अध्याय के जैसे पहले विभाग में हमने बोला था ना, इसके तीन हम लोग विभाग करेंगे, चार विभाग करेंगे। तो पहले क्या भगवान ने अर्जुन को बताया कि अभी आप ज्ञान योग के लिए पात्र नहीं हो, तो आप कर्म योग करो। तो अभी तक हमें भगवान कर्म योग के विषय में बता रहे थे, लेकिन क्योंकि यदि अगर आप ना कर्म योग ज्ञान योग के पात्र नहीं होगे, और यदि आप पात्र होने से पहले ही व्यक्ति संन्यास स्वीकार कर लेगा, यानी कि वो ज्ञान योग या संन्यास योग में चला जाएगा, बुद्धि योग खाली सब कुछ छोड़ देगा कार्य करना, तो क्या होगा, वो मिथ्याचारी उच्यते, वो मिथ्याचारी कहलाएगा। तो आप कर्म योग के लिए कार्य करो, कर्म योग के लिए यज्ञ विधि जो भगवान ने बताया ना, कर्म कांड में यज्ञ विधि कि आप यज्ञ करो, परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। ऐसा नहीं करो कि बस देवताओं के लिए यज्ञ करो या उसके फल के लिए करो, वो कारण के करो तो वही कर्म कांड ही, लेकिन कर्म योग समझकर करो। और ये जो यज्ञ का चक्कर है ना, जैसे अभी हम लोग 16 में पढ़ा, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अगार इंद्रिया रामो मोघम पार्थम सजीवते, कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों के द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चित रूप से पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो मतलब यज्ञ करना आवश्यक है, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए। यज्ञ पुरुषो यज्ञार्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन, के जो भी हम कार्य करेंगे अगर वो यज्ञ कर्म नहीं है, भगवान की खुशी के लिए नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो अब अगर अब भगवान क्या बताएंगे कि अगर आप बिल्कुल इस कर्म योग से ऊपर हो, कर्म योग या कर्म कांड के स्तर से बिल्कुल ऊपर हो, आपको संसार में किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं हो, केवल आत्मा में ही संतुष्ट हो, आप बिल्कुल केवल आत्मा से ही तृप्त हो, आत्मा में रति है, फिर भी आप कर्म योग ही करो, फिर भी आपको कर्म नहीं त्यागना है, कर्म योग करो। क्यों? क्योंकि अन्य लोग के उदाहरण के लिए। वैसे तो अर्जुन इस स्तर पर नहीं, अभी हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें क्या भगवान क्या बता रहे हैं, यस्तु आत्मरति एव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आप अभी स्थिति पर नहीं हो, ये जो स्थिति मैं बता रहा हूँ ना, इस पर आप नहीं हो, लेकिन यदि आप इस स्थिति तक पहुंच जाते हो, यस्तु आत्मरति, अगर ऐसा है, अगर आप इस जगह इस स्थिति पर हो, तब भी उसको क्या करना है, तब भी आपको आगे बताएंगे अर्जुन, अर्जुन को भगवान के ना 22 में भगवान बताए क्या बोलेंगे, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, कि तुम अपनी बात कर रहे हो, मुझे देखो, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही किसी चीज की आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? ताकि दूसरों को दिखाने के लिए, अगर मैं अपने कर्तव्य पूरे नहीं करूंगा तो सब लोग मेरे ही कार्य का अनुसरण करेंगे, तो तुम तो फिर भी, तुम्हें तो और भी करने चाहिए थे ना, अपने कर्म करने चाहिए, तुम अपने कार्य को त्याग नहीं सकते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें दूसरों को सिखाने के लिए भी कार्य, लेकिन आप तो अभी तक इस स्थिति पर पहुंचे ही नहीं हो, वो कौन होता है जिसको कार्य नहीं करने हैं, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं जो भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त है एकदम। अब इस श्लोक में हमें आत्मरति कैसे बताया, आत्मरति आत्मतृप्त और आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मा में रति होगी, आत्मा में संतुष्टि होगी, आत्मा में तृप्त होगा, उसके लिए तस्य कारम न विद्यते, उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, भले वो अगर कार्य अपने कर्तव्य छोड़ देता, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं होता। अभी समाज में हम जो ये वर्णाश्रम पद्धति वैदिक पद्धति है, उसमें क्या होता है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हाँ? हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट, जैसे मुझे जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, और है ना जो भी सहूलतें चाहिए, वो अदर प्राणियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, दूध पीने के लिए उनके ऊपर, पशुओं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं ना। तो हमें जीवन जीने के लिए समाज की आवश्यकता है, हम समाज के बगैर अकेले नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब एक कुछ भी नहीं करें और एक जगह पर बैठ जाएं तो भी हमको समाज की आवश्यकता है। परंतु इस श्लोक में भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, जिसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मराम, वो बिल्कुल आत्मा में रहती है उसकी। इस समाज में क्या होता है, हर किसी, अगर हम सिविक्स में पढ़ते ना, जैसे कि हर कोई, दो चीजें हम लोगों को सिखाई जाती है, राइट्स एंड ड्यूटीज। कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं और कुछ हमारे अधिकार होते हैं, है ना। कुछ समाज से हम अधिकार प्राप्त करते हैं, उसकी बदले में हमें कुछ कर्तव्य, जैसे हर चीज में ऐसा होता है, कर्तव्य, राइट एंड ड्यूटीज तो हर जगह पे होती है। घर में भी हम देखते हैं, जैसे संतान जो है वो माता पिता का आदर करती है, उनकी आज्ञाओं का पालन करती है, तो ये संतान का कर्तव्य है, और उसको अधिकार उसके बदले में क्या मिलता है कि वो घर में उसको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, खाना कपड़ा और हर चीज उसको रहने के लिए हर चीज उसको प्रोवाइड किया जाता है, वो उसका अधिकार है। उसी तरह माता पिता का ये अधिकार है कि संतान उसकी, है ना, रिस्पेक्ट करें, और उसका कर्तव्य होता है कि वो संतान को सारी चीजें प्रोवाइड करें। उसी तरह समाज में भी हर जगह पर, जैसे हम कुछ खरीदने के लिए जाते तो हमको हर जगह पे कर्तव्य और ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज एंड राइट्स को देखना पड़ता है। लेकिन आज का समाज इतना बिगड़ गया है कि वो कोई भी यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को सही नहीं करना चाहता, कोई भी अपने कर्तव्य नहीं निभाना चाहता, खाली अधिकार चाहता है। संतान ये नहीं चाहती है कि पेरेंट्स की बात मानी जाए, उनका ना आदर किया जाए, लेकिन उसको अपने राइट्स सारे चाहिए होते हैं। उसी तरह समाज में जहां पर भी देखते हैं ना, सब कोई क्या चाहते हैं कि हमारी अधिकार हमें मिलते जाए। पत्नी पति से अधिकार चाहेगी, लेकिन वो पति के ना आज्ञा का पालन करना नहीं चाहेगी। उसी तरह पति भी चाहेगा कि पत्नी जो है वो अब मुझे, मेरा अधिकार है, वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी केयर करे और सब कुछ करे, लेकिन उसके राइट्स मेरे को नहीं देने। हर कोई एक दूसरे के राइट्स को खाने के लिए पड़ा होता है और चाहता है कि नहीं, वो मेरा अधिकार मुझे फिर भी मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, अधिकार के लिए सब लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के कहने का क्या मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी पर निर्भर नहीं है। अब अगर हम लोग निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमको कार्य करना पड़ता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कर्तव्यों का पालन, अगर हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम अधिकार भी नहीं चाह रहे हैं, तब कहीं जाकर हम अपने कर्तव्य से निवृत्त हो सकते हैं, ऐसे नहीं निवृत्त हो सकते। अगर ऐसे ही हम डिपेंडेंट होते हुए भी अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे तो फिर हम मिथ्याचारी होंगे। अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सारे कर्तव्य छोड़ देते हैं और भक्तों का संग करना चाहते हैं, फिर भक्तों का संग करके वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसमें अपने कर्तव्य उनको निभाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हम भक्तों का संग भी नहीं करें सब, क्योंकि भक्तों का संग करने के टाइम पर भी उनको अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं ना। ऐसे आप फ्री नहीं होते हो, क्योंकि भक्तों के साथ अगर हम लोग रहते हैं तो फिर भी हम लोग, है ना, जो रूल्स होते हैं उनको निभाने पड़ते हैं, अपनी उनकी बात अक्सर माननी पड़ती है, या फिर बहुत जगह पे टॉलरेंट करना पड़ता है। तो फिर व्यक्ति क्या सोचता है कि हम अकेले जाकर रहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि जब वो अकेला रह रहा है तब भी उसके साथ उसका मन रहता है। तो मनैव मनुष्याणां कारण बंधनम्, तो ये जो बंधन और मोक्ष का कारण बनता है, अगर वो विषयों के, अब क्योंकि वहां पर उसको कोई रोक नहीं है जहां पर वो अकेला रह रहा है, तो फिर क्या होगा, तो वो विषयों का चिंतन करेगा। तो इसलिए ज्यादा बेहतर क्या है कि हम संग में रहें। हम अकेले जाकर तब तक हम इस स्टेज पर नहीं है, तब तक हम सबको छोड़ छाड़ कर नहीं कर रह सकते। फिर क्या होगा, और भी चिंतन करेंगे विषयों का, कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी बोलते अकेले में भक्ति नहीं होती, भक्ति संकीर्तन यानी संग से होती है, सब मिलकर भक्ति कर सकते हैं। आप अकेले में अपराध कर सकते हो, अब अपराध हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं महाराजा भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी इतना बड़ा राज छोड़ दिया और बोला मैं अकेले में जंगल में जाके तपस्या करूंगा, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था उनके साथ ये बताने वाला कि क्यों हिरण के अंदर इतना मोह लगा दिया तुमने। जब हम साथ में रहते ना तो हमें गाइडेंस मिलती रहती है, भक्तों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए और भक्तों को सहन करना सीखना चाहिए कि उन भले अगर हम भक्तों के साथ रह रहे हैं तो कुछ चीजें हमें सहन करनी पड़ती है, तो वो सहन उससे क्या होगा कि हम मन के अपराध से फिर भी बच जाएंगे, उनको सहन करेंगे यानी कि उनकी बातों को मानना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब समाज में कुछ लोग मिलकर रहते हैं तो हमारी मेंटेलिटी नहीं मिलती है तो अक्सर हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कठिनाई ज्यादा बेहतर है उससे कि आप अलग जाके रह लो और फिर आप वही विषयों का चिंतन कर रहे हो, मन कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि साथ में जब हम रहते हैं ना तो मन लगा होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सेवा की योजनाएं बना रहे होते हैं, तो फिर मन हमारा स्वतः लग रहा है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो व्यक्ति आत्मा में आनंद रहता है तथा उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन आप क्योंकि इस स्टेज पर अभी नहीं हो तो आपको अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता, यानी कि वो बस भक्ति में ही संतुष्ट है, बस ही उसको करनी होती है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, आत्मा में संतुष्ट है तो फिर उसको किसी कोई अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत ही धुल जाता है। जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है, यानी कि वरना तो अगर हम हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए हजारों साल तक यज्ञ करने पड़ते, लेकिन यदि हम सारा का सारा डिपेंडेंट कृष्ण के ऊपर है, कृष्ण भावना भावित है, केवल कृष्ण पर ही आधारित है, तो फिर वो क्षण में ही हमारे हृदय का जो गंदगी है, जो मेल है, वो साफ हो जाता है, पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। जब इस तरह से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है तो फिर हृदय के साथ भगवान का जो हमारा संबंध है, शाश्वत संबंध है, पूर्णतया उसके उस संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, यानी कि जो कार्य कर रहा होता है वो खुद ब खुद हो रहा होता है, भगवान की कृपा पर वो निर्भर रहता है, किसी समाज में किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, लेकिन भगवान जब इतनी कृपा कर, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है भगवान के ऊपर, तो फिर वो स्वयं उसका कार्य हो रहा होता है, सारे कार्य प्रकाशित हो रहे होते हैं, अतएव वैदिक आदेश के प्रति उसका कर्तव्य निषेध हो जाता है। फिर आदेश के वैदिक वेदों के जो आदेश है, ये यज्ञ अर्थात कर्म और ये सब, वो निषेध, वो अगर वो नहीं भी करता है तो चलता है, जैसे क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ग्रस्त ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, वो सब वेदों में लिखे हुए, लेकिन यदि वो आत्मतृप्त हो गया है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तब वो अपने कर्तव्य नहीं भी करता है तो चलता है, फिर सारे कर्तव्य उसका कर्तव्य निषेध हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य परलोभनों में कोई आनंद मिलता है, मतलब नशा, पर स्त्री संग या मांसाहार, कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं करती, कोई भी सांसारिक प्रलोभन उसमें उसको कोई आनंद नहीं आता है, उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य हो जाता है, भगवान की भक्ति। यानी जब वो इस स्टेज पर पहुंचता है ना, जब संसार की किसी चीज से आश्रित नहीं रहता है, फिर वो संन्यास ले सकता है। जब संन्यास लेता है फिर वो सन्यासी के कार्य करता है, फिर वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या जो भी हो वो कार्य नहीं करता है, सिर्फ संन्यास ही ले जाता है और केवल भगवान की भक्ति करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता। लेकिन और दूसरे जो कार्य है, जो वैदिक कार्य है, वो उसको नहीं निभाने पड़ते। लेकिन अर्जुन अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुंचा था, तो इसलिए भगवान ने कहा कि अगर कोई पहुंच जाता है तो उसके लिए कार्य नहीं होते, लेकिन भगवान आगे फिर भी यही बताएंगे कि अगर तुम इधर पहुंच भी गए तो भी तुम दूसरों को सिखाने के लिए कार्य करो। और आगे भगवान इसी चीज को ज्यादा स्पष्ट करके बता रहे हैं, नैवतस्य कृते नाथो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ही कर्म ना करने की कोई कारण रह जाता। वो इतना कंफर्ट उसकी लाइफ होती है, इतना वो आत्मा में संतुष्ट होता है कि वो ये भी नहीं सोचता है कि मैं कर्म करूं या ना करूं। कर्म करने में तो उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है, लेकिन कर्म ना करने में भी उसकी कोई वजह ही नहीं होती कि कर्म ना करो, क्योंकि कर्म के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, तो उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान ने बताया, न चास्य सर्वभूतेषु, अन्य जीव पर वो आश्रित नहीं रहता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर फिर भी क्लियर करने की है कि क्या वो भगवान पर भी आश्रित नहीं रहता है? बेशक जब तक हम संसार में हैं, चाहे हम किसी भी स्टेज पर चले जाए, किसी ब्रह्मभूत स्टेज पर हो या स्वरूप सिद्ध स्टेज पर, जरूरी है कि हम भगवान पर आश्रित होते। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाशय, कि वो सर्वभूतेषु का मतलब यहाँ पर भगवान ने क्या बताया कि वो दूसरे प्राणियों पर आश्रित नहीं रहता। अब इस श्लोक में भगवान ने केवल अन्य जीवों की बात की है। अभी तक हम कर्म योग पर है ना, तो कर्म योग में अभी तक भगवान ने भक्ति योग की बात नहीं की है कि वो भगवान पर डिपेंडेंट होता है या भगवान ही। ये बात अभी तो श्री प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में सही से बता रहे थे, लेकिन श्लोक में क्या लिखा हुआ है, अगर पहले वाले श्लोक के साथ इसको हम करेंगे कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, अपने में ही पूर्णतया अनुतुष्ट रहता है और उसके लिए कोई कारण या कर्तव्य नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने कर्तव्य कर्मों के करने की आवश्यकता होती है और ना ही ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण होता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अभी भगवान भक्ति को आगे बताएंगे, अभी सिर्फ इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है। बस वो केवल और केवल उसके जीवन का लक्ष्य खाली कृष्ण भक्ति करना होता है, केवल कृष्ण की भक्ति, और कोई कर्तव्य में उसको कोई रुचि नहीं होती है और ना ही उसको अपना कोई अधिकार चाहिए होता है। किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कि अभी भगवान ने यहाँ पर तो यही बताया कि वो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे जाके बताएंगे कि अगर आप भक्ति में भी बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, बस समाधि में लगा दो, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होना भी निष्क्रियता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बस सब काम करना छोड़ दो। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस चीज को कितना अच्छा बताया, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् व्यपाश्यत, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, न ही किसी मनुष्य के ऊपर और न ही किसी देवता के ऊपर। कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। यानी कि वो जो कर रहा है, यानी कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित्व कार्य कर रहा होता है, वो वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है, यानी कि उसको दूसरे कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे वो क्षत्रिय है और फिर भी वो सब कुछ, जैसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम देखते हैं, वो ग्रस्त थे और अभी उनकी नई पत्नी आई थी, और लेकिन फिर भी उन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। वो ग्रस्त थे, ग्रस्त के आश्रम का पालन नहीं किया, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जब वो कृष्ण भावना भावित होकर बंदा को, जो कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है ना, तो फिर वो जो कार्य है वो उसके समस्त कर्तव्यों को पालन करने के लिए पर्याप्त है, उसके लिए अलग से उसको कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक बता दिया कि अगर आप इस स्टेज पर भी आ जाते हो, यानी स्वरूप सिद्ध भी बन जाते हो, तो भी आप निष्क्रिय नहीं रह सकते कर्तव्य का। फिर भी आपको वहां पर जो कर्तव्य हैं, भक्ति के जो कर्तव्य हैं, जैसे प्रचार करना, भगवान की सेवा करना, और कृष्ण भावना भावित अन्य कार्य करना, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, भक्तों को, है ना, दूसरे लोग को ज्ञान देना, ये सारे कार्य तो फिर भी आपको करने होते ना। तो आप जिस स्टेज पर हो उस स्टेज के हिसाब से आपको कार्य करना होता है। कार्य से आप मुक्त नहीं रह सकते, कार्य आपको कंटिन्यूस करना है। और जीव तो भगवान का दास है और सदैव जो भी कार्य करता है वो यही सोच के करे कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो यही कृष्ण भावना भावित कार्य, यही कृष्ण भावना अमृत है। शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कोट किया जाता है, उसका अर्थ श्लोक में माइंड से निकल गया है। उसका अर्थ ये है कि यदि आप अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हो, बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हो, लेकिन उससे यदि भगवान को संतुष्टि नहीं प्रदान करते हो, तो फिर ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का क्या फायदा। और यदि आप अपने कार्य से भगवान को संतुष्ट कर लेते हो, जब आपके कार्य से भगवान संतुष्ट है, तो फिर अन्य कर्तव्य करने का क्या फायदा। तो वास्तव में कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हमें नियत कर्म नहीं छोड़ने जब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं जो ब्रह्मभूत या स्वरूप सिद्ध स्टेज है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि उस स्टेज पर पहुंचकर भी हमें कर्तव्य अवश्य करने, अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं 22 में कि मेरे लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और तो भी मैं नियत कर्म कर रहा हूँ। और 23 में भगवान कहते हैं, यदि हयम् न वर्तयम् जातु कर्मण्य तेन्द्रिय मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी से नहीं करूंगा, तो पार्थ निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। कि नियत कर्म तो नहीं किया कृष्ण ने भी अपने, लेकिन नियत कर्म करने पड़ते हैं ताकि हम किसी भी स्टेज पर हैं। भगवान की इच्छा यही है, भगवान का आदेश यही है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। नियतम क्षमा 18.48 में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया, सहजम कर्म कांतेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता। प्रत्येक प्रयास में किसी ना किसी दोष से आवृत होता है, यानी कि हर कार्य में कोई दोष भी होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी भी ना त्यागे। यानी कि आपको दिख रहा है कि आपका ये जो कार्य है, यानी क्षत्रिय धर्म का पालन जो है, उसके कारण आप अपने गुरुजनों का वध करना पड़ेगा, अपने प्रिय पितामह का वध करना पड़ेगा, उसमें अपराध दिख रहा है। लेकिन सदोषम अपि न त्यजेत, कि आपको अपने कर्तव्य, यदि उसमें अपराध भी दिख रहा है, लेकिन कर्तव्य को आप नहीं त्याग सकते हो। हर किसी के कार्य में कोई ना कोई कर्तव्य होता है। अभी क्षत्रिय जब कार्य करता है, तो उसको क्या कर्तव्य, उसमें ना क्या अपराध होता है कि अहिंसा हिंसा होती है, सबकी हत्या होती है, ब्राह्मण भी अपने कार्य करता है तो यज्ञ उसको करने पड़ते हैं और पशु बलि देनी होती है। उसी तरह हर कार्य में, जैसे व्यापारी भी कार्य करते हैं तो उनको व्यापार में अक्सर ऐसा होता है झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन कर्तव्य आप नहीं त्याग सकते हो, आपको अपने कर्तव्य अभी, या फिर शूद्र होते हैं तो जैसा उनको जैसा स्वामी मिला है उसके अनुसार उसको अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वो अगर कभी ऐसा होता है कि स्वामी की आज्ञा जो है वो सही नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो सेवक है उसको उसके कार्य करने पड़ते हैं, तो फिर है ना अपने कर्तव्य नहीं छोड़ सकता, चाहे मनुष्य कोई भी स्टेज पर पहुंचे, लेकिन कृष्ण भावना भावित होने के बाद भी उसके जो कर्तव्य है वो उसको पूरे करने पड़ते हैं। आगे भगवान बहुत अच्छा समझाएंगे, पता नहीं मैं कितना समझा पाई हूँ, मुझे समझाना इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन आशा है कि आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हो, आप लोग को समझ में आ गया होगा इसको, क्योंकि ये कर्मयोग है ना, हम हमेशा भक्ति योग को ही समझते हैं, अब उसको कर्मयोग को स्मूथ भगवान आगे बताते जाएंगे तो हमें और भी अच्छा अच्छा समझ में आएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो भले आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।